ओम शांति। आप बाबा साथ हैं और क्या चाहिए, चाहिए का संकल्प आना भी आज की मुरली का स्लोगन था। चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रायल रूप का मांगना है। फिर भी कुछ ना तो कुछ चाहिए होता है, चाहना तो बनी रहती है, लेकिन ये है शुभ चाहना, श्रेष्ठ चाहना कि हम अच्छी अच्छी अनुभूतियां करें। शुभ इच्छा है ये, पुरुषार्थ में तीव्रता आती रहे, सबके साथ संबंध संपर्क में भी हमारी व्यवहारिकता ठीक बनी रहे, सबका सहयोग मिलता रहे, जीवन निर्विघ्न बनता रहे, ये भी तो सब चाहिए चाहिए की इच्छाएं हैं ना। लेकिन ये शुभ इच्छाएं हैं, शुभ चाहनाएं हैं। तो बाबा के हर ज्ञान बिंदु में बहुत सारे रहस्य समाये होते हैं। डिपेंड करता है हम उसको किस दृष्टिकोण से लेते हैं, कैसे उसको उठाते हैं। क्योंकि कोई भी चीज को अगर एक दृष्टि से देखेंगे तो भी पुरुषार्थ में कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है, इसलिए उसको सभी तरफ से देखना जरूरी है। कोई चीज हमने अगर पकड़ी है जो आपको सामने दिखाई दे रहा, आप हो सकता है उसी के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि आपको दिखाई दे रहा और आप सच्चे हैं उसके बारे में, लेकिन जो चीज इस तरफ पीछे है मुझे वो दिखाई दे रही है। जैसे आप देख रहे हैं कि सामने नीला रंग है, अब टीचर ने एक दो स्टूडेंट को बिठा दिया, एक इधर बिठा दिया और बीच में एक टेबल रख दी और बीच में एक बॉक्स रख दिया। तो इस वाले स्टूडेंट को पूछा है कि इस तरफ में कौन सा रंग है, तो बता रहा है ब्लू कलर है। इस वाले को पूछा, उसने कहा येलो कलर है। तो दोनों को अलग अलग दिखाई दे रहा है। अब ये सोच रहा है कि वो सारा ब्लू है, ये सोच रहा है वो सारा येलो है, लेकिन जब उसको पलटे किया जाता है तो दोनों अपनी जगह तो दोनों सत्य ही हैं वो। तो हम हर एक चीज को हर एंगल से देखें तो उसका अर्थ समय पर परिवर्तन हो जाता है। समय और परिस्थितियों के अनुसार बाबा की शिक्षाओं में भी बहुत बदलाव आता रहता है। कई बार देखते हैं ना, जो बाबा ने आज शिक्षा दी है कल उसके वो उल्ट होगी, लेकिन वो समय परिस्थितियां, सामने सुनने वाले कौन है, किस एंगल से वो सुन रहे हैं, उनकी मानसिकता कैसी है, वो सब चीज देख के ज्ञान दिया जाता है। जैसे कोई दुकानदार के पास अगर कोई ग्राहक आता है तो उसको ग्राहक की नब्ज पकड़नी पड़ती है, उसके हाव भाव को देख के उसको सौदा दिखाना पड़ता है। अब वो ग्राहक 100 रुपये की चीज लेने आया है और उसको पहले 1000 की आगे रख दी तो फिर क्या होगा, भाग जाएगा वो, इसलिए उसकी नब्ज पकड़नी पड़ती है। तो बाबा का ज्ञान बहुत ऊंचा है। तो बाबा ने शुरू शुरू में, जैसे यज्ञ के स्थापना काल में शुरू शुरू में तो ज्ञान क्या दिया कि आत्मा अंगूठे मिसल है, अंडे मिसल है ना। लेकिन धीरे धीरे बाद में कहा ये बिल्कुल सूक्ष्म है। तो ऐसे समय अनुसार बाबा की शिक्षाएं भी, हमारी मानसिकता कैसी है, हम उसको किस तरीके से उठा सकते हैं या हमारी प्रोग्रेस कैसे हो सकती है, बाबा उसी अनुसार हमको ज्ञान देते हैं। तो आज बाबा किस लिए आए हैं, हाँ आज बाप आए हैं तुम बच्चों की ऊंच तकदीर बनाने के लिए, और ऊंच तकदीर का आधार है श्रीमत, अर्थात पढ़ाई भी कहेंगे। तो तकदीर कैसे बनती है, क्योंकि हम अपने चिंतन को बढ़ाना ना, इसलिए बाबा ने कहा जब तक चिंतन नहीं बढ़ेगा, मनन नहीं बढ़ेगा तो मग्न अवस्था नहीं होगी। तो तकदीर ऊंची बनाने के लिए क्या क्या करना होता है सांसारिक दृष्टिकोण से। पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, जिसको अपनी तकदीर ऊंची बनानी है वो टाइम वेस्ट करेगा, वो टाइम नहीं वेस्ट करेगा, उसको त्याग भी करना पड़ेगा अपने खेल कूद का, उसको संग भी अच्छा बना के रखना पड़ेगा, जो होमवर्क मिलेगा उसको वो उसको बहुत अच्छी रीति से करेगा, वो टीचर का दिल जीतेगा तभी अच्छे मार्क से पास होगा। और एक बार पढ़ाई पढ़ ली अच्छी पोस्ट पर पहुंच गया तो बाद में तो केवल उसको साइन ही करने होते हैं, है ना, पगार भी बहुत अच्छी मिलेगी, तो तकदीर बन गई ना उसकी। लेकिन उस तकदीर बनाने के लिए पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ है। ऐसे ही बाबा कहते ऊंच पद पाने के लिए बाप तुम्हारी तकदीर को जगाने के लिए आए, ऊंच तकदीर बनानी है। तो यहाँ भी तो वो नियम लागू होते हैं ना, तो पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी पड़ेगी, खेल कूद जो हमारा है, एक है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से खेल कूद, हाईटेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी खेल कूद है, उससे भी थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। संग भी अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई भी अच्छी होनी चाहिए, सबके साथ मिलना भी है, क्योंकि अगर हमारे पुरुषार्थ में कोई बार बार विघ्न बन रहा है, खींच रहा है उसको, तो जिस तरीके से हम जिस समय पर मंजिल पर पहुंचना है उस समय पर तो नहीं पहुंच पाएंगे, तो सबका दिल भी जीतना है। जैसे मैराथन रेस होती है तो पहले से प्रैक्टिस करते हैं ना, वो तुरंत थोड़ा जाते हैं। तो जितने भी हमारे पुरुषार्थ के टिप्स हैं वो सब हमारे निरंतर चलते रहने चाहिए, सारा अभ्यास अभ्यास अभ्यास, ये ज्ञान है ही अभ्यास वाला। जैसे एथलीट होते हैं तो पहले से बड़े लंबे समय तक उनका अभ्यास रहता है, ऐसे नहीं जीतते वो, जो इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो लंबे समय का उनका अभ्यास होता है हर क्षेत्र में। चाहे कोई किसान है, अगर किसान देख रहा अगर बारिश नहीं आ रही है, दो साल तक बारिश नहीं है तो हल खेतों को अगर वो जोतना छोड़ दे, हल चलाना छोड़ दे, तो क्या होगा, भूमि बंजर बन जाएगी, तो उसकी फिर भी उसको देख रेख करनी पड़ती है, छोड़ नहीं देगा उसको। ऐसे ही हमें ब्राह्मण जीवन में भी निरंतर हर चीज़ में अभ्यास करते ही रहना है, हर चीज़ में उसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो उनको जंक लग जाएगा, है ना। जैसे कहते हैं ना, एक बार बारिश नहीं हुई और नारद जी आके कह गए किसानों को, अभी 8-10 साल बारिश नहीं होगी, तो किसान निरुत्साहित हो गए और सोचा अभी इतने साल बारिश तो होगी नहीं, तो हम क्या करें, छोड़ देते हैं, दूसरा को धंधा करते हैं। लेकिन एक किसान था जो रोज खेतों में जाता था, बाकी तो घर में सोए रहते थे, वो रोज खेतों में जाता था, हल चलाता था, खेतों की देखभाल करता था, खेतों में बैठता था, पेड़ पौधों के पास बैठता था, उनकी पालना करता था, उनको पानी वानी देता था जो भी थोड़ा बहुत था, तो बाकी सब उसके ऊपर हंसते थे कि जब नारद जी आकर कह गए हैं कि 10 साल बारिश नहीं होगी, तो और उसका बताया भी क्यों नहीं बारिश होगी, बोला जब तक शिव का डमरू नहीं बजेगा तब तक बारिश नहीं होगी। और ऊपर जाके नारद ने शिव को भी कह दिया कि 10 साल तक आप डमरू नहीं बजाना, और शिव जी भी मान गए, ठीक है नहीं बजाऊंगा। तो वो किसान जो हैं वो मजे से सोते रहे और एक किसान मेहनत करता रहा। आखिर तो पार्वती जी को रहम आ गया थोड़ा, तो पार्वती ने बोला देखो नीचे ऐसे हो रहा है, तो आपके 10 साल जैसे खेतों में वो हल नहीं चलाएंगे तो उनको खेत बंजर पड़ जाएंगे, अगर आपने 10 साल डमरू नहीं बजाए तो आप डमरू बुला बजाना भी भूल जाएंगे। तो शिव ने बोला बात तो ठीक है, तो बोला एक बार मैं जाके तो देखूं डमरू। तो जैसे डमरू बजाया बारिश हो गई, अब बारिश हो गई, जो किसान तो सोते रहते थे 2-3 साल तक, खेत तो सारे बंजर हो गए, और जो रोज जाता था उसके खेत पर हरियाली आ गई एकदम। तो ऐसे ही हम अनेक प्रकार की बातों की उलझन में ना फंसे, बल्कि अपने पुरुषार्थ की ध्यान दें, पर ध्यान दें, है ना, अपने लक्ष्य की तरफ। इधर उधर अगर हम देखेंगे तो हम खुद ही अपने लक्ष्य से वंचित रह जाएंगे। धावक जो होता है वो इधर उधर देखता नहीं है, कौन आगे जा रहा कौन पीछे आ रहा, नहीं, अगर वो एक दूसरे को देखने में लगा रहे तो वो समय पर मंजिल पर पहुंचेगा नहीं और फर्स्ट डिवीजन में ले आओ। कितनी मेहनत करते हो, जो शांतिवन से माउंट आबू आते थे, अभी तो बंद हो गया सारा। मैराथन में 21 किलोमीटर 3-3 घंटे में ऊपर सीधा, इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद, तो कितने उनकी प्रैक्टिस थी। तो ऐसे हमारा भी एक यात्रा है, इस यात्रा में बहुत पड़ाव है, बहुत आकर्षक सीन सीनरियाँ हैं जहाँ हमारा मन बुद्धि अटक सकता है, क्योंकि लंबे समय से मन बुद्धि को अटकाने की प्रैक्टिस तो हमें है, लेकिन अभी नई कुछ आदतों का निर्माण करना है, है ना। जैसे आज बाबा ने बताया ना, भक्ति मार्ग में आदतें पड़ी हुई हैं, कौन सी? हे राम, हे भगवान, बीमारी के समय पुकारते हैं, लेकिन तुम बच्चों को नहीं पुकारना है, तो क्या करना है? अधिकार से उसका उसकी मदद लेनी है। बाबा कहते आह्वान करो, आ जाओ बाबा। तो हमारे पुकारने में, हमारे बुलाने में, आह्वान करने में और दुनिया के पुकारने में अंतर है। उनका पुकारना है स्वार्थ वाला, थोड़े समय के लिए, लेकिन हमारा है हद नहीं, बेहद का है, विश्व कल्याण की भावना का है। तो भक्ति मार्ग की आदतों से निकलना है, है ना। तो आज हम जो चिंतन करेंगे उसके बीच में मुरली का भी रिवाइज करते रहेंगे। आज के प्रधान के ऊपर, प्रीतम का प्यार किसे मिलता है? हाँ, बुद्धि की लगन सदा एक बाप के साथ रहे तो प्रीतम का प्यार मिलेगा, और क्या होगा साथ में? और सदा विजय रत्न बनेंगे, है ना। और विजय रत्न बनने के लिए सबसे पहले वो सदा प्रीतम को सन्मुख अनुभव करेंगे। तो सारे दिन में प्रीतम की याद सताती है कि प्रीतम भी हमको याद करता रहे, है ना। और क्या बात होगी अगर उसके साथ हमारी प्रीतम है तो? एक तो बुद्धि की लगन उसकी तरफ होगा, दूसरा सन्मुख रहेंगे, तीसरी बात कोई भी व्यक्ति, कोई भी वैभव आकर्षित नहीं कर सकता है, और चौथी बात बुद्धि में कोई भी संकल्प विकल्प नहीं आएगा, इतनी प्रीत होगी, स्वप्न तक भी उसके साथ हमारा संकल्प जुड़ा रहेगा। और नेक्स्ट क्या होगा लास्ट वाला? उसमें तीन बातें थी, बताओ। अगर प्रीत है उसे तो सर्व संबंध उससे जुटे रहेंगे, और उसका परिणाम तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग खाऊं और तुम्ही को खाऊं, तुम्ही को खाऊं। जानकी दादी जी कहते थे ना, बाबा आप इतने मीठे हो, दिल करता आपको खा जाऊं। है ना। तो प्रीतम की प्रीत हमारे साथ कैसे जुटी रहे? खाली ये क्या है उतना याद कर, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा और विस्तार करने की जरूरत पड़ती है, तो वो वरदान हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, तो वो वरदान हमारे संकल्पों में समा जाता है, हमारे बोल में समा जाता है, हमारे नैनों में समा जाता है, तो हम वरदानी मूर्त कहला सकते हैं। खाली उतना याद करके मैं विजयी रत्न हूँ नहीं होगा उससे काम, थोड़ा उस पर चिंतन करना पड़ेगा। जैसे बाबा कहते ना, विचार सागर मंथन करो सवेरे सवेरे उठकर, जो बच्चे विचार सागर मंथन करते हैं वो सारा दिन खुशी में रहते हैं, नहीं तो बीमार गौ बीमार बीमार उगाए उसकी तरह रहेंगे। तो मन बुद्धि में कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए। जैसे कईयों को खाने की आदत होती रहती तो मुंह में वो चिंगमी डाल के चलाते रहते सारा दिन कुछ ना, जो गुटखा वगैरह डालते हैं मुंह में उनका मुंह भी चलता रहता है, नशा चढ़ा रहता है उससे उनको। तो हमें भी कुछ ना कुछ पॉइंट हमें अपने मन बुद्धि में डाल के रखने हैं, क्योंकि बाबा ने हमको दिव्य बुद्धि दी है, दिव्य नेत्र दिए है, तो दिव्य बुद्धि में हमको दिव्य ज्ञान ही डाल के रखना है। और दिव्य ज्ञान डालेंगे तो हमारा चिंतन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, नहीं तो दूसरा ज्ञान भी काम करता रहेगा। ज्ञान तो संसारी ज्ञान भी बुद्धि में बहुत है ना, वो भी काम करता रहेगा, व्यर्थ वाला विकल्प संकल्प जो है वो भी बुद्धि में बहुत है, वो काम करता रहेगा। तो बुद्धि की लगन अगर एक बाप से जुट रही है तो फिर धीरे धीरे हमारे संसार की तरफ जो मोह है वो नष्ट होता जाएगा, आकर्षण समाप्त हो जाएंगे। जो बाबा ने कहा ना, संकल्प विकल्प व्यक्ति वैभव वस्तु सब, उसकी तरफ हमारा आकर्षण धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। ये कोई तुरंत खत्म होने वाली चीजें नहीं है, लंबे समय का, इसलिए बोला ना अभ्यास अभ्यास अभ्यास। और जिसके साथ प्रीत होती है उसके आगे समर्पण होना बहुत सहज होता है, चाहे वो तन से समर्पणता है, मन से है, धन से, मन से है, वाचा है, कर्मणा है। तन से समर्पणता अर्थात हमारा तन जो बाबा कहते दिदिची रिचि मिशल हड्डियां सेवा में स्वाहा करते रहो, तो सेवा उसी के प्रति अनुकूल और सेवा करते भी हमारा निमित्त भाव वो बना रहेगा, कर्ण करावन हार की स्मृति बनी रहेगी। अगर हम इस वरदान को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, वो वरदान हमारे कर्मेंद्रियों में अगर समा जाए तो कुछ तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा ना। तो समर्पणता हमारी प्रगाढ़ होती जाएगी दिन प्रतिदिन हर बात में, आंखें बंद करके उसकी बात को स्वीकार करने की हमारी स्थिति बनती जाएगी, नहीं तो क्यों क्या कैसे के भंवर जाल में क्यों लगी रहेगी उसकी। तो पहली बात समर्पणता आएगी, समर्पणता हमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, है ना। संसार में भी अगर किसी की शादी होती है तो एक दो के प्रति समर्पण हो जाते हैं वो, तो हमारा तो प्रीतम है वो, हम सब उसकी प्रीतमाएं हैं, उसकी पार्वती हैं, सजनीय हैं, तो हमारा प्यार कितना होना चाहिए। और प्यार क्यों बढ़ना चाहिए, क्योंकि प्राप्तियां कितनी बड़ी हैं। संसार की तो अल्प काल की थी, विनाशी थी, यहां अविनाशी प्राप्तियां सदा काल की हैं, अखंड है, अखुट है, वो तो अखुट खान का मालिक है, वो अविनाशी है, सदा काल की है। और प्राप्तियां कितनी ऊंच हैं, ये जितनी प्राप्त करने के बाद भी जितनी मर्जी बांटते रहो खुटेगी नहीं, और ही बढ़ती जाएंगी। तो मन बुद्धि की समर्पणता चाहिए इसमें। समर्पणता अर्थात वो जो कहता है उसके उसको मानकर चलते रहना, उस पर मन में उसके प्रति हमारे संकल्प चले, बुद्धि उसी में रमण करती रहे, है ना। बुद्धि के बारे में सोचना है, क्या क्या बाबा ने बुद्धि के बारे में कहा हुआ है। अगर हम नहीं सोच रहे हैं तो हमारी प्रीत बुद्धि की बजाय पत्थर बुद्धि बनती जा रही है, विशाल बुद्धि की बजाय संकुचित बुद्धि बनती जा रही है। इतनी साफ बुद्धि वो दिन प्रतिदिन हमारी बुद्धि को स्वच्छ बुद्धि कर रहा है, अगर स्वच्छ नहीं है तो तुच्छ हो रही है। माना बुद्धि को खींचना है, नहीं खींचेंगे तो भारी भारी रहेगा। मन भारी क्यों रहता है सारे दिन में, क्योंकि चिंतन को बढ़ाते नहीं हम, क्योंकि हम खुद उसका रियलाइज करते हैं ना, जब जब चिंतन रुक गया मन बुद्धि डल हो जाती है, सुन हो जाता है, अच्छा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए चिंतन को बढ़ाना है। बस उस वरदान कोई भी माना एक पॉइंट ले लो, उस पर रुक जाओ, रुको, देखो उसके बारे में जो जो आज तक सुना है उसके ऊपर चिंतन करो, तो फिर बाबा भी मदद करेगा, क्योंकि हम उसके प्रति हमारा प्यार तो है ना, वो प्यार जो हम प्रदर्शित कर रहे हैं मन से अंदर ही अंदर, तो वो ऊपर से अच्छे अच्छे ज्ञान रत्नों की बरसात करेगा, मुख खुलेगा, तो समर्पणता आती जाएगी। और जिससे प्यार होता है उसके साथ सच्चाई सफाई भी रहती है, कोई बात छिपाते नहीं है हम, जैसे बाबा कहते हैं ना, कोई भी गलती होती है तो बाप से छिपाओ नहीं, अगर हम स्पष्ट रूप से बता देते हैं तो क्या होता है, माफ हो जाती है। वैसे तो बाबा कहते हैं ड्रामा में माफी है नहीं, लेकिन वो हल्के हो जाते हैं कि हमने बता दिया हुआ है, तो जो सूली से कांटा हो जाती, जो परिस्थितियां बड़ी बड़ी आने वाली थी, तो बाबा उन परिस्थितियों को झेलने की अंदर में हमारी क्षमता को विकसित कर देता है, और परिस्थितियां हमको वो खेल के समान लगती हैं। सबको अनुभव होगा जीवन में इतनी इतनी बड़ी परिस्थितियां आई होंगी, लेकिन उन परिस्थितियों में भी हम सहज रूप से पार हो गए, वो प्यार है उसके प्रति ना। बाबा कहते बच्चे हाथ छोड़ते हैं लेकिन बाप कभी हाथ नहीं छोड़ते हैं, एक ही सेंटेंस याद रखो कितना प्यार बढ़ता है, कि वो हाथ नहीं छोड़ रहा, हम हाथ छोड़ के चले जा रहे हैं इस संसार के इतने बड़े मेले में, हम हमारा हाथ उसने आके पकड़ लिया, कितना बड़ा भाग्य, कितनी ऊंची तकदीर है। हमारी तकदीर तो बैठे बैठे बन रही है, इसलिए कहते हैं ना तकदीर जगाकर आई हूं, तो वास्तव में वो हमारे लिए तो गीत है ना, गीत था ना आज का, तकदीर जगाकर आई हूं, तो कितनी बड़ी तकदीर है हम सबकी। तो सच्चाई सफाई चाहिए अंदर बाहर एक, उसमें कोई शल कपट ना हो। जैसे बताया ना भक्ति मार्ग में गाते हैं, मुझे निर्गुण हारे में गुण कोई गुण ना ही, नीच पापी कपटी हूं आपे ही तरस परोई। तो भक्ति मार्ग में ये तो हम सब थे ना, अब उसने हमारे पर तर्स किया आके, कितनी बड़ी लॉटरी है, कितनी बड़ी तकदीर हमारी जगा दी तुरंत। मनुष्य थोड़ा तकदीर को जगा सकता है, भगवान को ही आना पड़ता है। मनुष्यों की है भिखारी तकदीर आज की मुरली में था ना, और तुम बच्चों की है ईश्वरीय तकदीर, कितनी बड़ी बात है। हाँ, कोई जज है, कोई वकील है, कोई व्यापार है, वो सब है देह अभिमान है, वो है बेकारी तकदीर, भ्रष्टाचार है। हाँ हाँ जी हाँ बिल्कुल। तो वो सब चीजें देखो, हमारी तकदीर कितनी ऊंची है, किसी भी पॉइंट पर हम थोड़ा सा रुक जाएं, उस पर सोचें, मतलब दूसरी बातों को छोड़ना पड़ेगा। अगर हमारी चिंतन नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं हमने दूसरी बातों से प्यार के रखा, प्रीतम से प्यार कम है, फिर हम कहते हैं बढ़ता क्यों नहीं प्यार, बढ़ता इसलिए नहीं क्योंकि हम छोड़ते नहीं उसको। वो सवेरे सवेरे हमको ज्ञान रत्नों की थाली हम भर के दे रहा है और हम उसको सुनने के तुरंत किनारे रख दिया और पत्थर की बोरियां पकड़ ली, अपने बोझ उठा लिया मन के ऊपर और उन पत्थरों से खेले सारे दिन में, तो पत्थर क्या करेंगे, इधर उधर लगेगा तो चोट लगेगी ना। तो स्पष्ट रहना पड़ेगा, सच्चाई सफाई। उस दिन था ना अव्यक्त वाणी में संडे की लास्ट के पैराग्राफ में दो दो बातें, साफ और स्पष्ट, अंदर बाहर एक है ना। तो ये चीज है कि सच्चाई सफाई, मीत गीत रीत। हाँ ये है प्रीत, ये 81 की मूली शायद, उसमें चार बातें हैं, प्रीत गीत मीत रीत है ना। भगवान से प्रीत अगर बढ़ानी है तो उसी को अपना मीत बना लो, उसी की रीति रसम पर चलते रहो, उसी के गीत गाते रहो, उसी के मीत बन रहो। कितने सुंदर बाबा के महावाक्य होते हैं अगर वो बुद्धि में रहे तो। देखो समय पर कैसे याद आ गए, तो बुद्धि में रखें तभी है ना। तो स्पष्टता, तीसरी बात वरदान में थी, सर्व संबंध एक से है ना, नहीं तो संसार के संबंधों में बहुत मन आकर्षित करता है। और अभी वर्तमान समय तो ऐसे है कि सब संबंधों से दूर होते जा रहे हैं अपने आप ही, जो दूर है उनको पास नहीं बुला सकते और जो पास है उनको हाथ नहीं मिला सकते, है कि नहीं है। तो ये बाबा कैसे इस ड्रामा में सारी युक्तियां रची हुई है, घर वापसी के लिए पवित्र तो सबको, वरना युक्ति चाहे भले कोई भी है, अभी परिस्थितियों के वश होकर कर रहे हैं, समय प्रमाण कर रहे हैं, लेकिन सबको पावन होकर लौटना, बिना पावन तो बन वापस जा नहीं सकते हैं। तो तीसरी बात, सर्व संबंधों का अनुभव, सर्व संबंध अर्थात अगर हमारी प्रीत बाबा से है तो संसार का कोई भी संबंध हमको आकर्षित नहीं करेगा। हाँ निभाने हैं, तोड़ निभाना है, लेकिन वहां हमारी आसक्ति नहीं होगी, मोह नहीं होगा, जो हमको बार बार योग में बैठे बैठे वो ही मम्मी याद आ रही है, वो डैडी याद आ रहे हैं, वो ही अपने दोस्त याद आ रहे हैं, वो चीजें नहीं होंगी, या वो जिसके साथ हमने दुश्मनी करके रखी वो ही याद आ रहा है, उसके बारे में सोच रहे हैं कुछ ना कुछ कि योग में अच्छी टचिंग हो जाए उसका, कैसे उसके बदला लेना है। तो सर्व संबंध एक बाप से है ना, लिखना है सर्व संबंधों का अनुभव बाबा से कैसे करें, अपने आप उसको कुछ क्रिएट करना है। और चौथी बात है कि जब हमारी प्रीत बाबा से है तो संसार के जितने भी आकर्षण हैं उन आकर्षणों में हमारी बुद्धि जाएगी नहीं, जो बताया ना मैंने वरदान में, व्यक्ति वस्तु वैभव कहीं बुद्धि नहीं जाएगी, सारा दिन बुद्धि ज्ञान रत्नों से खेलती रहेगी, उसी में घूमती रहेगी। आज बाबा ने बताया ना, तुम्हारा दुनिया में भी सत्संग होता है, लेकिन उन सत्संगों में जो जाते हैं वो ये सोच कर नहीं जाते कि हमको यहाँ से वर्षा मिलेगा, तुम बच्चे सत बाप के पास आते हो बाप से वर्षा लेने के लिए, तुमको निश्चय है क्योंकि तुम्हारा बाप है सच्चा सच्चा गुरु, तो वो सतगुरु है, स्वयं भाग्य विधाता है, स्वयं भाग्य विधाता हमारे भाग्य का निर्माण कर रहा है, हमारे भाग्य को बिना रहा है, खुद उसने कलम दे दिए जितनी मर्जी लंबी खींच लो, खुली छुट्टी है। तो कितनी कृपा उसके आशीर्वाद पर हमारे पर, कितना सहयोग है उसके ऊपर, है ना। स्कूल में भी जो बच्चे रिच्छे रित्री पढ़ते हैं तो टीचर की पूरी नजर रहती है उसके ऊपर, क्योंकि सारा साल बच्चा सबकी नजरों में अच्छा पढ़ रहा है, और लास्ट में भी टीचर की पूरी नजर रहेगी कि अगर लास्ट में भी थोड़ा सा रह गया तो टीचर की इंसल्ट हो जाएगी। तो हम सभी गॉडली स्टूडेंट हैं, भगवान के बच्चे हैं, तो जिंदगी भर अगर हम अच्छे पढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से भी अंत में बाबा मदद करेगा, लेकिन मदद उनकी करेगा जो लंबे समय तक उसकी शिक्षाओं को, उसके श्रीमत को अपने सीने से लगाकर चलते रहे आंखें बंद करके। ऐसा नहीं है कि हम सुन तो रहे हैं लेकिन चल तो किसी दूसरे की मत पर है, मन मत पर ही है, पर मत पर ही है, पर दर्शन में है, पर पंच में हमारा टाइम चला जा रहा है, अटेंशन तो रखनी पड़ेगी ना, इसलिए बार बार अपने को चेक करना है, चेक करेंगे बार बार तो चेंज आना स्वतः होता जाएगा, और जब चेंज होंगे तो जीवन में जितने भी चैलेंज आएंगे उनको सहज पार कर लेंगे। चैलेंज तो आएंगी, परिस्थिति तो आएंगी, ऐसा नहीं कि परिस्थिति नहीं आएंगी, लेकिन उन परिस्थितियों को पार करने के लिए हमारे अंदर शक्ति भर जाएगी। ज्ञान की अशक्ति है, ज्ञान भी योग बल से कम नहीं है। जैसे ज्ञान हम किसका है, भगवान का दिया हुआ ज्ञान चिंतन कर रहे हैं ना, तो इस ज्ञान में परमात्म शक्ति भरी हुई है, उस बोल में वो पावर है, वो ताकत है, प्योरिटी है, उसका संदेश माया हुआ है, परमात्म शक्ति है इसके अंदर, तो ये भी एक योग बल का काम करती है। ज्ञान को तलवार कहा जाता है ना, लाइट और माइट है, ज्ञान को लाइट और माइट कहा जाता है। जहां प्रकाश है वहां अंधकार हो नहीं सकता है, जब ज्ञान हमारी बुद्धि में गूंजता रहता है तो किसी भी प्रकार का अंधकार हो नहीं सकता है। तो ज्ञान का स्विच हमेशा ऑन रखना है। बाबा ने हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जैसे तीसरा नेत्र बंद हुआ तो माया तुरंत हमारे पर आक्रमण कर देगी, जैसे बिल्ली कबूतर पर करती है। कबूतर की आंखें बंद करके बैठ जाता है, बिल्ली तो सामने है, थोड़ा नहीं कि आंखें बंद करने से बिल्ली उसको खाएगी नहीं, तो ऐसे परिस्थिति तो आएंगी आएंगी। अगर हमने ज्ञान का नेत्र पहले से खुला नहीं रखा है तो बिल्ली खा जाएगी, माया रूपी बिल्ली खा जाएगी। ज्ञान नेत्र हमेशा हमारा खुला रहना चाहिए, जैसे भी समस्या आएगी तुरंत उस ज्ञान को अप्लाई किया और पार हो गए। तो कोई भी व्यक्ति वस्तु हमको संसार का आकर्षित ना करे, ये हमको बुद्धि में रखना है, और वो तब होगा जब हमारा आकर्षण ज्ञान के प्रति बढ़ता जाएगा, चिंतन के प्रति बढ़ता जाएगा, मनन चिंतन के प्रति बढ़ता जाएगा, कुछ लिखने के प्रति बढ़ता जाएगा, कुछ ना कुछ तो बुद्धि में गूंजता ही रहना चाहिए। तो ये था, और नेक्स्ट है, जिसके साथ प्रीत होती है उसके प्रति दूसरी बातों का त्याग करना बहुत आसान होता है, मुश्किल नहीं होता है। मेरी अगर आपसे प्रीत है, अगर आप मुझे कहीं जाने के लिए कह रहे हैं तो मैं दूसरा काम छोड़ दूंगा तुरंत, क्योंकि प्रीत है। उसी तरह का अगर हमारी भगवान से प्रीत है तो दूसरे जो इधर उधर की फालतू बातें उनको त्याग करना मुश्किल नहीं होगा, सहज काम हो जाएगा, लेकिन प्रीत हमारी होनी चाहिए। तो त्याग करना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि त्याग इसलिए स्वतः हो रहा है क्योंकि भाग्य बहुत ऊंचा है, त्याग तो है ही नहीं है वास्तव में, ये यहां तो हमारे भाग्य का उदय हुआ है। त्याग तो खत्म हो गया, त्याग शब्द संसार में कहते हैं त्याग त्याग त्याग, यहां तो त्याग है ही नहीं वास्तव में, आश्रय। और जो त्याग किया वो है क्या है, वो दुख का त्याग किया है, आश्रय वृत्तियों का है, जो विकृतियां थी हमारे अंदर, जो अनेक प्रकार के ऐसे वैसे उल्टे संकल्प थे उनका त्याग किया। आय के धारणा के सार में ना लास्ट पॉइंट कौन सी है, तुम्हें ना उल्टी बातें सुननी है ना सुनानी है, तो हमने उन्हीं बातों का त्याग किया जो हमारे मन बुद्धि को अंदर ही अंदर खाती जा रही थी, मन बुद्धि को बोझिल बनाती जा रही थी। अगर अभी भी हम वो करें कि ये ऐसा क्यों करता है, ये वैसा क्यों करता है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको वैसा नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें क्या है, हमारी बुद्धि का भोजन नहीं है, खुराक नहीं है ये, तो हम जैसे बुद्धि के अंदर जहर भर रहे हैं, अपने आप को ही हम धीमा धीमा जहर देते जा रहे हैं। इतना भगवान ऊपर से अमृत देने के लिए आया, उस दिन था ना मुरली, बाप तुमको अमृत देने के लिए आया हुआ है, तो उस अमृत से हमें अपने मन बुद्धि को भरना है। अमृत का प्याला हमेशा छलकता रहे बुद्धि में, बाबा ने कहा ना ज्ञान टपकते रहना चाहिए हमें, टप 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 ज्ञान टपते रहना चाहिए। तो संसार की त्याग तो बहुत सहज तरीके से हो जाएगा, वो त्याग करना नहीं पड़ेगा, वो तो स्वतः चीज है, वो तो वास्तव में हमारे अच्छे पुरुषार्थ का परिणाम है कि पुरानी चीजों का त्याग स्वतः हो जाता है, त्याग करने की जरूरत नहीं है, है ना, तो त्याग हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिससे हमारी प्रीत होती है तो जो उसकी आदतें होती है वो हमारे में स्वतः आने लगती हैं। बाबा के कौन कौन से संस्कार हैं, विश्व कल्याण के संस्कार हैं, वो प्योरिटी का सागर है, ज्ञान का सागर है, तो वो वास्तव में हमारे अंदर आने लगेंगे, क्योंकि हमने उसके साथ रहना शुरू कर दिया, और जो जिसके साथ रहता है उसके आदतें, उसके संस्कार, उसके बोल, वो सब स्वतः आने लगते हैं धीरे धीरे। जैसे आपने मधुबन में भी देखा होता है, यहाँ आते हैं अब आप तो कोई किसी स्टेट से आया है, कोई किसी स्टेट से आया हुआ है, लेकिन जैसे एक ही स्थान पर दोनों व्यक्ति सेवा करते हैं तो धीरे धीरे आपस में उनका प्यार होना शुरू हो जाता है, भले प्रीत शुरू हो जाती है ना। फिर बाद में उसका नंबर भी ले लेंगे एक दो से, फिर बीच बीच में बात भी करेंगे, आप भी आप अगली बार कब आएंगे सेवा में, हम भी तभी टिकट बनाएंगे दोनों, फिर दोनों घूमने जाएंगे इधर उधर, तो कैसे प्रीति बढ़ती है। तो संस्कार मिल गया ना, क्योंकि उसके साथ रहना चालू किया थोड़ा समय रहे, तो बाबा के साथ अगर हमने रहना कर दिया चालू, तो धीरे धीरे हमारे संस्कार उसके जैसे बनते जाएंगे, क्योंकि हम उसके बारे में सोच रहे हैं, है ना, उसी उसने जो दिया उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके बताया ना कि उसको वो सन्मुख अनुभव करेंगे। अगर हमारी प्रीतम से प्रीत है तो सन्मुख अनुभव करेंगे, वो ही बुद्धि के घर में जाएंगे यहां से सेवा करने के बाद, तो बुद्धि में वो ही घूमेगा क्या कि मधुमन में हम यहाँ गए थे तो बाबा पहाड़ी भी गए थे, नक्की लेक भी पैदल गए थे, बाबा की कुटिया में भी गए थे, चार धाम की यात्रा गई थी, अपना सेवा करते करते भी हम सब बातें साथ करते थे, फोटो भी खींची होगी साथ में, वो भी मोबाइल में देखेंगे, तो कितनी सारी बातें हो जाती हैं, आपस में संस्कार कैसे मिलने लगते हैं, क्योंकि साथ में रहे इतना समय। इसी तरह बाबा कहते बाप को अपना साथी बना लो तो वो संस्कार स्वतः आने शुरू हो जाएंगे। वास्तव में ये मेहनत से मुक्त होने का मार्ग है, मेहनत वाला मार्ग नहीं है वो, भले बाबा कहते हैं कि मेहनत तो है इस मार्ग में, लेकिन मेहनत तब है जब हम इस ज्ञान से विस्मृत हो जाते हैं। जैसे ज्ञान के हम स्मृति स्वरूप है तो मेहनत तो है ही नहीं है। इसलिए कई दफा सभी अनुभव करते होंगे योग लगाना नहीं पड़ता, स्वतः लग जाता है। तो मेहनत अगर है तो हमेशा मेहनत रहनी चाहिए, तो उसमें योग क्यों लग रहा है, माना वो सहज है। तो ये हमारे नेचुरल संस्कार हैं, जो उसके संस्कार है वो हमारे संस्कार है, प्योरिटी हमारा संस्कार है, खुशी हमारा संस्कार है, वो प्रयास नहीं करना खुश रहने का, वो तो हमारा नेचुरल निजी संस्कार है। लेकिन उन संस्कारों से हम दूर चले गए हैं बहुत, इसलिए बाबा को घड़ी घड़ी स्मृति दिलानी पड़ती है, बच्चे तुम खुशी के देवता हो, अब खुशी का देवता हो, भगवान टाइटल दे के आए और मैं मुंह लटका के बैठा हूं, माना हमने भगवान की जो उसने जो टाइटल दिया है उसकी जैसे इंसल्ट की, उसको मैंने स्वीकार नहीं किया है। जैसे बाबा कहते तुम मास्टर भाग्य विधाता हो और हम अपने भाग्य को भूले हुए हैं, जैसे बाबा कहते तुम आधार मूर्त उद्धार मूर्त हो, संसार के लिए आधार मूर्त उद्धार मूर्त हो, और हम अपना उद्धार करने के लिए तड़फ रहे हैं इधर उधर, अपना नहीं उद्धार कर पा रहे हैं। अर्थात हमें जो बोध दे के गया है उसको हमने अपने अंदर नहीं रखा, उसको हमने किनारे रख दिया कहीं, वो इतनी बड़ी गिफ्ट दे गया है, उस गिफ्ट से हम एक सेकंड में लिफ्ट से पहुंच के उड़ सकते हैं ऊपर। जैसे आज बाबा ने कहा ना आत्मा उड़ नहीं सकती क्योंकि तमो प्रधान पतित हो गई है, तो उड़ाने के लिए पंख दे गया हमको लेकिन हम उड़ नहीं रहे, क्योंकि जो उसने टाइटल दिया वो हमने किनारे रख दिया, उस पर चिंतन नहीं किया, उसको अपनाया नहीं अपने ऊपर, उस पर काम नहीं किया हमने, तो थोड़ा तो काम करना पड़ेगा ना। कोई बाप बच्चों की मेहनत थोड़ा देख सकता है, इसलिए भगवान भी कहता है मैं बच्चों की मेहनत नहीं देख सकता है, लेकिन मेहनत हम खूब करते हैं, हाँ चिंतन पर मेहनत करते हैं, उस मेहनत में सुख समाया हुआ है, उस मेहनत में अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है मनन चिंतन करने की इस मेहनत में। लेकिन मनन चिंतन भी तुरंत नहीं होता है, बड़े लंबे समय के बाद धीरे धीरे रास्ता खुलता जाता है। कई दफा तो मन ही नहीं करेगा डायरी को हाथ लगाने में, ऐसे भी होता है किताब पढ़ी हुई हाथ लगाने में मन भी नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे करता करता अभ्यास के जड़ मत तो सुजान, अभ्यास करते जाएंगे तो एक ना एक दिन आएगा जो कहते हैं डिवाइन कॉल ऊपर से आएगी, उसका तुरंत अवतरण होगा और एकदम बुद्धि के सारे ब्लॉकेज खुल जाएंगे, सारे सब रास्ते खुल जाएंगे। अगर एक चट्टान हमको हटानी है तो चट्टान हटाने के लिए तुरंत थोड़ा धक्का मार के हट जाएगी, वो काम करना पड़ेगा ना उसके ऊपर। तो ऐसे जिंदगी में हम सबको छोटे छोटे अभ्यास करते रहना, मनन चिंतन को बढ़ाना है। मनन चिंतन हमारी बुद्धि की खुराक है, वो बुद्धि के लिए शक्तिशाली भोजन है, हमारे योग में उड़ने का साधन है, वो एकाग्रता का साधन है मनन चिंतन। बताया था ना उस दिन भी कि बैठ जाओ 10 मिनट कहीं भी एकांत स्थान पर और सोचो मुरली के बारे में, आज की मुरली में बाबा ने क्या क्या कहा, 10-20 पॉइंट तो हाथ में आएंगे, अवश्य आएंगे, वो ऐसा सोचो ना कि नहीं याद आएंगे। कोई तो पूछते हैं बोला हमको याद ही नहीं रहती, पहले से अंदर हमने डाल दिया याद ही नहीं रहती, क्यों नहीं याद रहती, अरे बैठो, कम से कम दो शब्द तो याद आएंगे, मीठे बच्चे, इतना भी नहीं याद आता, इतना तो याद आता ना कि वो भी नहीं आएगा। अब मीठे बच्चे पर सोचना शुरू दे, अच्छा मीठे बच्चे, मैं मीठा बच्चा क्यों हूं? जरूर भगवान ने हमारे में कुछ तो मिठास देखी है ना, तभी उस तो उसने मुझे मीठे बच्चे बुलाए। और बच्चा हूं भगवान का बच्चा तो जरूर मीठा होगा, भगवान के बच्चे कड़वे तो हो नहीं सकते हैं। तो धीरे धीरे चिंतन को बढ़ाना है, कुछ तो याद आएगा मुरली के ऊपर। सोचो स्लोगन क्या था, चाहे चाहे के संकल्प पाना भी रायल रूप का मांगना है। तो सोचो इसके ऊपर कि भक्त मांगने, चलो एक ही शब्द उसमें ले लिया मांगना है। अब भक्ति में हम कितना मांगते रहे, मांग मांग कर भिखारी बन गया, और भगवान ने आके क्या बना दिया हमको, अधिकारी बना दिया। और जहां अधिकार है वहां किसी प्रकार की अप्राप्ति है ही नहीं है, प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं। उसने तो सारे खजाने खोल दिए हैं, ज्ञान गुण शक्तियां प्रेम पवित्रता स्नेह सब कुछ दे दिया उसने। कल के वरदान में था ना ये सब चीजें, कि जहां आवाज से परे की स्थिति में स्थित रहते हैं, बीज रूप अवस्था का अनुभव करते हैं, वहां सारे गुण स्वतः आते हैं, वो शांति में सब समाया हुआ। कल के वरदान में था ना ये सारा विस्तार से, ये भी हमने याद नहीं है लेकिन तुरंत याद आ गया वो। तो एक बात से लिंक जोड़ेंगे ने कहा, आज के स्लोगन से हमने मांगना शब्द सोचा, अब मांगना तो कल के वरदान में है ही नहीं, लेकिन वो लिंक जुड़ गया ना साथ में जाके। तो ये हेल्प किसकी है, सब भगवान की हेल्प है। तो थोड़ा अपने पर काम करेंगे तो ये निश्चित रूप से हमारी विजय होगी। जो भाव ना तुम सदा विजय रत्न हो जाएंगे, जो आज के प्रधान में तो सदा विजय रत्न है, तो उस प्रधान पर काम करने का पड़ेगा। उस पर जो बताया तुम ही संग बैठो तुम ही संग खाऊं, तो उठते बैठते खाते पीते भी जो वो खिला रहा है वो हमारी स्मृति में रहेगा। जो वो हमारे साथ खेल कर रहा है, हमारे साथ खेल पाल कर रहा है, हमको सजा रहा है, इतनी ऊंची ऊंची शिक्षाएं दे रहा है, हमारे भविष्य का निर्माण कर रहा है, वो सब चीजें याद आती थी तो प्रीत हमारी जुटती रहेगी। तो सच्चा प्रीतम सारे कल्प में हमको केवल एक बार ही मिलता है। इस प्रीतम से हमको अपनी प्रीत जो है प्रगाढ़ करते जाना है, बढ़ाते जाना है, क्योंकि इस प्रीत से ही हमारे भाग्य का उदय होगा, हमारा पद ऊंच बनेगा, तकदीर ऊंच बनेगी। तो मुरली पर काम करना है, भले 10-15 शब्द लिख लो मुरली के, फिर उस पर सोचते रहो दिन में या योग में बैठे भी सोचो या कहीं भी, मन बुद्धि एकदम शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगी बुद्धि, वो अनुभव होने लगेगा कि सचमुच बाबा मेरे सन्मुख है। वो फीलिंग होगी कि उसकी लाइट सचमुच मेरे ऊपर पड़ रही है। ज्ञान जो बताया ना भाई जी ने, ज्ञान क्या लाइट माइट है ना, जैसे हम उसके बारे में ज्ञान को सोचेंगे उसकी लाइट माइट का अनुभव होगा, अपलक योग रहेगा, आंखें अपलक रहेंगी, क्योंकि वो सामने बैठा है, सन्मुख है। अब आप मेरे पास आए हैं और मुझे पता है कि बहुत बड़ी मुझे प्राप्ति होने वाली है, तो मेरी आंखें बंद होगी, भले मैं 2 दिन से नहीं भी सोया है, मुझे पता अभी भाई जी आए हैं तो 100 करोड़ की लॉटरी मेरी लगने वाली है, अभी तो 100 करोड़ सुनते मेरे अंदर करंट आ जाएगा एकदम। तो भगवान हमारे सामने लॉटरी लेकर आ रहा सवेरे सवेरे, लॉटरी कौन सी, उसका ज्ञान ही तो लॉटरी है, तो नींद तो आ ही नहीं सकती फिर। लेकिन बुद्धि में वो रखना ना कि हमको प्राप्ति क्या हो रही है। लेकिन होता है क्या है कि सोचते हैं प्राप्ति दिख तो नहीं रही, हम सोचते हैं कि स्वर्ग ना इसी शरीर में सामने दिखाई देना चाहिए। हमारी अपेक्षाएं जो क्या होती हैं, इंतजार नहीं हम करना चाहते हैं। जो बाबा ने उस दिन कहा ना, धैर्यवत का फाउंडेशन क्या है, आपने बताया था उस दिन, बेट एंड सी, 14 अप्रैल की मुरली के 10वां पैरा। तो वो बाबा हेल्प करेगा, दिन प्रतिदिन हमें पुरुषार्थ में हमारी उन्नति हो रही है, निरंतर तरक्की हो रही है, वो फीलिंग होनी चाहिए, महसूस तो होनी चाहिए। तो अपने चिंतन को बढ़ाना है, और कौन सी बात हो सकती है, परमात्मा प्रेम के लिए उसके ऊपर संपूर्ण निश्चय, संपूर्ण निश्चय। निश्चय बुद्धि की निशानियां थी ना उस दिन, कितनी निशानियां थी, हाँ, और भी बहुत सारे निश्चय थे। तो है जी नशा निश्चय, हाँ वो सारी चीजें, उनको नशा भी होगा, निश्चय भी होगा, निश्चिंत अवस्था होगी, निर्माण होंगे, निमित्त होंगे, बहुत सारी बातें हैं। तो वो अभी निश्चय की बात है इस बुद्धि में, तो उस स्मृति में रखना है कि निश्चय बुद्धि से संबंधित और कौन कौन सी मुरली में बाबा ने क्या क्या कहा है, और वो हमारे में है या नहीं है, नहीं है तो उस पर हमको कैसे काम करना है। तो उसको बढ़ाना है, चिंतन को बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना। तो प्रीतम से हमारी प्रीत निरंतर बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि संगम युग है, सुख में रहने का युग है ये, सुख में युग है ये। अगर क्योंकि ये तो ब्राह्मण चोटी है ना, हम टॉप स्टेज पर खड़े हैं और टॉप स्टेज पर हम पूरे वर्ल्ड को देख रहे हैं, पूरी पूरी सृष्टि हमको दिखाई दे रही है, क्योंकि ये प्रीति से बारे में है ना, बताया ना, जैसे बताते हैं अगर हम वृत्त के अंदर ही रहेंगे तो हमको अंदर की दुनिया दिखाई देगी, लेकिन यहां ऊपर खड़े होने पड़ेगा तो सारी दुनिया दिखाई दे। तो को हमेशा हमको अपनी टॉप स्टेज बनाने के लिए जो बाबा ने टॉप टॉप स्थितियां दी हैं उन पर चिंतन करना है, उन पर थोड़ा काम करना पड़ेगा, विस्तार करना पड़ेगा, बुद्धि को और खींचना पड़ेगा बार बार, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा अपने लिए एकांत में, थोड़ा कुछ त्याग करना पड़ेगा। त्याग वो जो हमारे लिए दुखदायी चीजें बन चुकी हैं जिनको हम थोड़ा, हाँ उस दुख में भी सुख तो मिलता है, इसलिए मनुष्य छोड़ता नहीं है, क्योंकि पुराने दुख तो है ना अंदर में समाये हुए, वो है अल्पकाल का, रावण का होशियार है वो भी, रावण भी कम थोड़ा नहीं है, नए नए तरीके से आएगा वो षड्यंत्र रचकर, सोचेंगे दो मिनट में क्या फर्क पड़ता है, बाद में चलते हैं दो मिनट योग में, वो दो मिनट में सारा काम हो जाएगा। सावधान नहीं हटी दुर्घटना घटी, थोड़ा भी मौका नहीं देना माया को, जैसे माया थोड़ा भी हमने मौका दिया तो माया अपना पूरा प्रहार कर देगी, क्योंकि माया को आदत पड़ी है ना। तो हमको सच्चे प्रीतम के साथ हमारी प्रीत हमेशा जुटी रहे, तो अपने ऊपर काम रखना है, हमेशा अनुभव करना है कि सच्चा प्रीतम मेरे सामने है, उसकी प्यार की बरसात मेरे ऊपर निरंतर होती जा रही है, उसके ज्ञान गुण शक्तियाँ प्योरिटी पीस ये सब चीज़ें जैसे सुरक्षा कवच के रूप में वो हमेशा हमारे साथ में है वो। ओम शांति।